जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो मतलब जो दुनिया का सबसे स्वार्थी और लालची इंसान हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पूरी जिंदगी में भूल कर भी कोई एक अच्छा काम नहीं किया,
कोई भी अच्छा काम नहीं।
बिल्कुल नहीं, जिसने कभी किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिया।
हाँ
अब जरा सोचिए कि मृत्यु के बाद वो इंसान किसी तरह से ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे स्वर्ग में पहुंच जाता है।
मतलब सीधे गोलोक।
हाँ, सीधे गोलोक, और उन सभी साधु संतों और तपस्वियों को पीछे छोड़ लेता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान और कड़े नियमों में बिता दिया।
ये तो काफी हैरान करने वाला है।
है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। हम आधार सामग्री के रूप में गणपत व्यास द्वारा लिखे गए एक बेहद दिलचस्प लेख, एक पापी बंदर को कैसे मिला गोलोक पुरुषोत्तम मास की कथा का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं।
बिल्कुल। और ये देखिए, ये कोई साधारण धार्मिक कथा नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक दिमाग घुमा देने वाला लूप होल मौजूद है।
एक लूप होल, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे कैसे अनजाने में किया गया सिर्फ एक काम पूरे जीवन के कर्मों के उस भारी भरकम गणित को एकदम शून्य कर सकता है।
और इस लेख में जो बात मुझे सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इसे हम प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान और मानव मनोविज्ञान के केस स्टडी के रूप में पढ़ सकते हैं।
अच्छा, एक केस स्टडी की तरह।
हाँ, क्योंकि ये कथा ना इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देती है कि आध्यात्मिक प्रगति बस एक सीधी रेखा में चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पुण्य नाम के सिक्के जमा किए और बदले में स्वर्ग खरीद लिया।
हाँ, वो जो टिपिकल लेन देन वाला सिस्टम हम सोचते हैं।
बिल्कुल। लेख का मुख्य ढांचा इस सवाल पर टिका है कि जब इंसान के अपने ही कर्म उसे सबसे निचले स्तर तक ले जाते हैं, तब तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कुछ विशेष समय और स्थान कैसे उन कर्मों के नियमों को ओवरराइड कर देते हैं।
जैसे किसी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई हिडन कमांड हो जो पूरे सिस्टम को ही रीसेट कर दे।
एकदम सही उपमा दिया आपने, बिल्कुल वैसा ही।
तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस केस स्टडी के जो मुख्य विषय हैं, यानी कदर्य नाम का एक ब्राह्मण, उसकी जांच से शुरू करते हैं।
हाँ, कदर्य प्राचीन केरल प्रदेश का रहने वाला।
बिल्कुल, ये इंसान लालच की जीती जागती मिसाल था। लेख बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि कदर्य का जीवन किसी भी सामाजिक या कह ले पारिवारिक दायित्व से पूरी तरह कटा हुआ था।
मतलब उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था।
कोई लेना देना नहीं, वो एक बगीचे में रहता था, वहीं के फल चुराता था, अपनी जरूरत भर का खाता था और बाकी फलों को बेचकर बस धन जमा करता रहता था। उसने कभी किसी तीर्थ की यात्रा नहीं की, किसी को दान नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने खुद के परिवार को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसका पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ चीजों को इकट्ठा करने तक सीमित था।
ये एक बहुत ही चरम स्थिति है लालच की,
है ना? मैं यही सोच रही थी कि एक इंसान इस हद तक क्यों गिर जाता है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो कदर ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जो हर कीमत पर बस अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है।
हाँ, आज के जमाने के होल्डर की तरह।
बिल्कुल, एक होल्डर की तरह वो बस अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देखता है लेकिन उस पैसे का कभी इस्तेमाल नहीं करता। हम ऐसी चीजें क्यों जमा करते हैं जिनका हम कभी उपयोग ही नहीं कर सकते?
मनोविज्ञान और प्राचीन दर्शन दोनों ही इस अत्यधिक संचय की प्रवृत्ति को हमारे भीतर की एक गहरी असुरक्षा से जोड़ते हैं।
असुरक्षा मतलब वो अंदर से डरा हुआ था।
व्यक्ति बाहरी वस्तुओं को, जैसे धन या संपत्ति को, पांगलों की तरह इकट्ठा करता है तो वो वास्तव में जीवन की जो अनिश्चितता है ना, उस पर नियंत्रण पाने का एक भ्रम पैदा कर रहा होता है।
अच्छा, मतलब उसे लगता है कि पैसा उसे बचा लेगा।
बिल्कुल। लेख में कदर्रे का फल चुराना और उन्हें बेचना सिर्फ आर्थिक लालच नहीं है, ये चेतना के सिकुड़ने की प्रक्रिया है। प्राचीन विचारकों का मानना था कि स्वार्थ व्यक्ति को उस व्यापक ब्रह्मांडीय नेटवर्क से ही अलग कर देता है।
मतलब वो खुद को सबसे काट लेता है।
हाँ, जब कोई व्यक्ति समाज, परिवार और करुणा के प्रवाह को रोक देता है तो वो ऊर्जा के उस चक्र को तोड़ देता है जो जीवन को चलाता है। कदरे फलों के उस विशाल बगीचे में रह तो रहा था,
जो कि एक तरह से प्रचुरता या अबंडेंस का प्रतीक है।
सही कहा, लेकिन मानसिक रूप से वो एक रेगिस्तान में जी रहा था। उसका लालच उसे बाहरी दुनिया से ही नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी आत्मा के विस्तार से भी पूरी तरह काट चुका था।
बाप रे, और ये जो अलबास था वो मौत के बाद भी उसके साथ गया। और यहां से कहानी में कर्मों के उस गणित की एंट्री होती है जो वाकई में बहुत भयानक है,
बहुत ही सटीक और भयानक।
हाँ, कदरिये के मृत्यु के बाद उसे मृत्यु के देवता यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। उसका खाता चेक होता है और जाहिर है पुण्य के नाम पर वहां बड़ा सा शून्य था।
होना ही था।
लेकिन यहाँ जो सजा का तरीका है ना, वो बहुत दिलचस्प है। उसे उबलते हुए तेल की कड़ाही में नहीं डाला जाता या किसी टिपिकल पारंपरिक नर्क में नहीं फेंका जाता।
नहीं, लेख के अनुसार उसे पहले प्रेत योनि में भेजा जाता है।
हाँ, और प्रेत योनि के बाद उसे एक बंदर के रूप में जन्म मिलता है। लेकिन ये कोई साधारण बंदर नहीं था, ये एक ऐसा बंदर था जिसे मुख का एक गंभीर रोग था।
एक ऐसी बीमारी जहां वो खा नहीं सकता।
बिल्कुल, वो पेड़ से फल तोड़ सकता था, फलों के बीच रह सकता था, लेकिन उस बीमारी के कारण उन्हें खा नहीं सकता था। मतलब पिछले जन्म में उसने फल चुराए थे और अब वो फलों से घिरा है, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें खा नहीं सकता।
ये कर्मों का एक बहुत ही व्यंग्यात्मक चक्र है जिसे पोएटिक जस्टिस कहते हैं।
एकदम पोएटिक जस्टिस। ये कर्म का नियम किसी जज की तरह सजा नहीं सुना रहा है, बल्कि एक 3D प्रिंटर की तरह काम कर रहा है।
3D प्रिंटर, ये उपमा बहुत ही सटीक है।
है ना? मतलब कोई व्यक्ति जीवन भर अपने दिमाग में जो डिजाइन बनाता है, मृत्यु के बाद प्रकृति उसे बस उसी डिजाइन का भौतिक शरीर दे देती है। कद्रिया ने जीवन भर छीनने और ना खा पाने का जो मानसिक मॉडल बनाया था, प्रकृति ने उसे बस प्रिंट कर दिया। एक बीमार बंदर जो फलों से घिरा है लेकिन भूखा है।
अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये 3D प्रिंटर वाली बात प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कर्म के विज्ञान को बहुत अच्छे से समझाती है। मृत्यु के बाद का ये सफर मन की ही एक विस्तारित अवस्था है।
मतलब मन जो सोचता है वही बन जाता है।
हाँ, प्राचीन दर्शन के अनुसार प्रेत योनि आखिर क्या है? ये कोई डरावना भूत होने की स्थिति नहीं है, ये असल में संवेदी अभाव यानी सेंसरी डिप्रिवेशन का चरम रूप है।
सेंसरी डिप्रिवेशन मतलब इच्छाएं हैं पर शरीर नहीं।
बिल्कुल, जब शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन इच्छाएं और लालसाएं ज्यों की त्यों मन में बनी रहती हैं, तो वो प्रेत अवस्था है। कदरिये के पास भूख थी, चीजों को समेटने की प्यास थी, लेकिन उन्हें भोगने के लिए कोई भौतिक तंत्र नहीं था।
ये तो किसी फैंटम लिम सिंड्रोम की तरह हो गया, जहां अंग कट चुका है लेकिन दर्द अभी भी महसूस हो रहा है।
एकदम सही। और फिर जब उसे भौतिक रूप मिलता है तो वो एक बंदर का होता है। बंदर जो चंचलता का प्रतीक है, बिना सोचे समझे चीजों पर झपटने का। कदरिये का जीवन भी इसी पर आधारित था।
लेकिन उस पर वो जो मुख का रोग था,
वो मुख का रोग इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रूर और सटीक तंत्र है। ये ब्रह्मांड का तरीका है उस असीमित लालच को एक भौतिक सीमा में बांधने का। ये उस आत्मा की शुद्धि के लिए एक बेहद दर्दनाक लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है,
ताकि चेतना को ये सिखाया जा सके कि जिन चीजों को पकड़कर रखने से वो सुरक्षित महसूस कर रहा था, वे चीजें कभी तृप्ति नहीं दे सकती।
बिल्कुल।
पर यार, ये तो एक अंतहीन यातना की तरह लगता है। वो बेचारा बंदर भूख और प्यास से तड़पते हुए भटक रहा है और इसी भटकने की प्रक्रिया में वो एक पर्वत पर पहुंचता है जहां मृगतीर्थ नाम का एक पवित्र सरोवर है।
हाँ, जहां देवता भी स्नान करते हैं।
सही। अब उस बीमार अशक्त बंदर को नहीं पता कि वो कहाँ है, और यहीं पे इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा और मुझे लगता है सबसे विवादित मोड़ आता है।
पुरुषोत्तम मास वाला समय।
हाँ, वो समय हिंदू पंचांग के अनुसार पुरुषोत्तम मास का चल रहा था। बंदर प्यास के मारे पानी पीने की कोशिश में उस सरोवर के किनारे जाता है, लेकिन कमजोरी के कारण पानी में गिर जाता है
और फिर वो बाहर नहीं आ पाता।
नहीं, वो लगातार 4 दिनों तक उस पानी में जीवन के लिए संघर्ष करता है, छटपटाता है और अनजाने में ही उस पवित्र जल में डूबता उतराता रहता है। 5वें दिन दोपहर में वो अपने प्राण त्याग देता है।
उसने कोई व्रत नहीं रखा था, कोई पूजा नहीं की थी।
बिल्कुल नहीं। और इसीलिए यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प है जाती है। मुझे यहाँ रुककर एक बहुत ही कड़ा सवाल पूछना है।
हाँ, पूछिए।
4 दिन तक महज इत्तेफाक से एक पानी के कुंड में छटपटाने से सीधा सर्वोच्च लोक यानी गोलोक, क्या ये उन लाखों लोगों के साथ अन्याय नहीं है या उनका मजाक नहीं उलाता जो जीवन भर तपस्या करते हैं, सचेत होकर नियमों का पालन करते हैं?
ये सवाल तो उठेगा ही।
अगर किसी अनजाने एक्सीडेंट से ही जीवन भर के पाप धुल सकते हैं, तो फिर धर्म और कर्म के पूरे कंस्ट्रक्ट की जरूरत ही क्या है? ये तो किसी वीडियो गेम के चीट कोड की तरह है जो पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा देता है।
देखिए, ये संदेह पूरी तरह से तार्किक है और ये उस मुख्य बिंदु को छूता है जिसे ये लेख स्थापित करना चाहता है। ये कोई पाप करने का लाइसेंस नहीं है।
तो फिर ये क्या है?
इसे समझने के लिए हमें प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान में अंतरिक्ष और समय की भौतिकी को समझना होगा। ये कोई चीट कोड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही विशिष्ट खगोलीय और आध्यात्मिक अलाइनमेंट है।
अलाइनमेंट मतलब ग्रहों या समय की कोई विशेष स्थिति?
हाँ, सबसे पहले पुरुषोत्तम मास, या जिसे अधिक मास भी कहते हैं, उसके तंत्र को समझते हैं। चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के बीच दिनों का अंतर होता है ना?
हाँ, वो जो लगभग 11 दिन का गैप होता है।
बिल्कुल, इस अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है। प्राचीन मिथकों के अनुसार इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी या देवता नहीं था, इसलिए इसे मलमास या अशुद्ध माना जाता था। ने अपनाया। दार्शनिक रूप से इसका अर्थ यह है कि ये एक ऐसा समय है जो सामान्य लौकिक समय चक्र के बाहर काम करता है।
अच्छा, मतलब ये समय सामान्य कर्मों के लेन देन के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है।
एकदम बाहर।
तो आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसा महीना है जो सामान्य कर्मों के मैट्रिक्स के बाहर ऑपरेट करता है, एक तरह का कॉस्मिक आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई।
हाँ, एक तरह से हाँ, कॉस्मिक आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई। और जब ये विशिष्ट समय एक विशिष्ट स्थान यानी तीर्थ के साथ जुड़ता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
मृग तीर्थ की वजह से?
हाँ, तीर्थ शब्द का मूल अर्थ ही है एक ऐसी जगह जहां से पार जाया जा सके, एक क्रॉसिंग पॉइंट। प्राचीन विचारकों का मानना था कि धरती पर कुछ ऐसे भौगोलिक नोड्स या ऊर्जा केंद्र होते हैं जहां भौतिक और गैर भौतिक आयामों के बीच का पर्दा बहुत पतला होता है।
ओहो, तो मृग तीर्थ एक ऐसा ही नोड था।
बिल्कुल, जब पुरुषोत्तम मास का स्थान और मृग तीर्थ का स्थान एक साथ मिले, तो उन्होंने एक ऐसा आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण पैदा किया जो सामान्य कर्मों के नियमों को निलंबित कर देता है,
सस्पेंड कर देता है।
हाँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल के पास आकर बदल जाते हैं, वैसे ही इस विशिष्ट अलाइनमेंट में कदेरिया के पिछले कर्मों का वजन काम करना बंद कर देता है।
आग जलाती है, चाहे कोई उसे जानबूझकर छुए या गलती से उस पर गिर जाए।
ये बात तो है।
इस विशिष्ट ऊर्जा क्षेत्र का काम उस चेतना को पूरी तरह से रीबूट करना था। ये पूर्ण समर्पण और ईश्वरीय करुणा का प्रतीक है।
ये तंत्र समझ में आता है, लेकिन लेकिन फिर भी क्या ये कर्मों के उस 3D प्रिंटर वाले सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज नहीं कर देता जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी?
कैसे?
देखिए, अगर चेतना की स्थिति ही अगला जन्म तय करती है, तो उस समय तो उस बंदर की चेतना में केवल डर था, प्यास थी और जीवित रहने की जद्दोजहद थी। उसके मन में कोई आध्यात्मिक विचार तो नहीं था ना? सही सवाल है।
फिर भी मृत्यु के तुरंत बाद लेख वर्णन करता है कि बंदर का वह सड़ा गला शरीर एक अलौकिक दिव्य स्वरूप में बदल गया। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, उसका तेज एकदम एक देवता जैसा था।
एक दिव्य रूप।
गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य के साथ आसमान से एक दिव्य विमान उतरा और भगवान के दूत उसे सम्मानपूर्वक गोलोक ले गए। खुद वह जीव हैरान था।
बिल्कुल, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था।
हाँ, वो दूतों से पूछ रहा था कि मुझ जैसे घोर पापी को ये VIP ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। दूत उसे उस जल और उस महीने का विज्ञान समझाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी यही है कि चेतना के स्तर पर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे गोलोक के योग्य बना दिया।
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इस लेख का सबसे गहरा दार्शनिक निष्कर्ष इसी में छिपा है। इसे हमें अहंकार के पूर्ण विनाश के रूप में देखना चाहिए।
अहंकार का विनाश, पर कैसे?
देखिए, जब इंसान सचेत रूप से तपस्या या दान करता है, तो उसके पीछे अक्सर एक सूक्ष्म अहंकार होता है। मैं ये कर रहा हूं या मुझे इसका पुण्य मिलेगा।
हाँ, वो मैंने किया वाली फीलिंग।
बिल्कुल, ये अहंकार भी एक प्रकार का कर्म उत्पन्न करता है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। लेकिन जरा उस बंदर को देखिए, बीमारी, प्रेत योनि की असीम पीड़ा और फिर 4 दिनों तक पानी में डूबने उतराने का वो भयानक संघर्ष। इस पूरी प्रक्रिया ने उस जीव के अंदर से मैं की भावना को पूरी तरह से मिटा दिया था।
कदरे का वो अहंकार जो कभी फलों को जमा करता था, वो एकदम शून्य हो चुका था। उसके पास अब कोई एजेंसी नहीं बची थी, कोई नियंत्रण नहीं बचा था।
वो बस पूर्ण असहायता की स्थिति में था।
सही कहा। प्राचीन रहस्यवादियों का तर्क है कि ब्रह्मांडीय कृपा, या जिसे हम ग्रेस कहते हैं, वो केवल तभी प्रवेश करती है जब बर्तन पूरी तरह से खाली हो।
ओहो, जब बर्तन खाली हो। हाँ, जब कोई व्यक्ति खुद को बचाने का हर प्रयास छोड़ देता है और पूरी तरह टूट जाता है, तब वो उस सर्वोच्च ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक योग्य बन जाता है। जल का वो अनजाना स्पर्श कोई जादू नहीं था, बल्कि वो उस शून्य हो चुकी चेतना के साथ परम चेतना का मिलन था।
क्या बात है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब अच्छे काम करने का भी एक सूक्ष्म अहंकार होता है जो हमें बांधे रखता है, और यहाँ अहंकार का पूरी तरह से टूट जाना ही मुक्ति का कारण बन गया।
बिल्कुल।
तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे केस स्टडी को समेटें तो ये कथा केवल कदर्री या एक बीमार बंदर के बारे में नहीं है, ये मानव स्वभाव के सबसे गहरे डार्क साइड यानी लालच और जमाखोरी से शुरू होती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे अपने विचार और मानसिक मॉडल हमारे लिए प्रेत योनि या बीमारी जैसी सजाओं का निर्माण करते हैं, ठीक उस 3D प्रिंटर की तरह। लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कथा ब्रह्मांड के उस भौतिकी को भी समझाती है, जहां समय और स्थान के कुछ विशिष्ट चौराहे कर्मों के कड़े गणित को एक झटके में बदल सकते हैं।
हाँ, पुरुषोत्तम मास और मृग तीर्थ की तरह। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड की संरचना में कठोर न्याय के साथ साथ अत्यंत दयालुता की भी जगह है।
और मैं ये भी कहूंगा कि ये कथा वर्तमान समय के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक संदेश छोड़ जाती है। आज का युग, जिसे अक्सर हसल कल्चर कहा जाता है, जहां हर कोई सिर्फ भाग रहा है।
हाँ, 10 संसाधनों को इकट्ठा करने और भविष्य को सुरक्षित करने की अंधी दौड़।
बिल्कुल। इस दौड़ में लोग अनजाने में अपने चारों ओर वही दीवारें बना रहे हैं जो कदरे ने बनाई थीं। भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए लोग आध्यात्मिक पक्ष को भूल चुके हैं। ये लेख याद दिलाता है कि केवल भौतिक संग्रह अंततः खालीपन की ओर ले जाता है।
सही कहा।
असली कुंजी ये है कि हम उस ब्रह्मांडी प्रवाह के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाने पर भगवान हजार कदम बढ़ाते हैं। ये केवल प्रयास करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही ऊर्जा से जुड़ने के बारे में है।
सही ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होना, ये एक ऐसा विचार है जो वाकई लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है। और इसी के साथ मैं एक नए विचार को सामने रखते हुए इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी।
बिल्कुल।
इस गहन चर्चा में हमने अंधाधुंध लालच के खतरों, कर्मों के सिद्धांत और ईश्वरीय कृपा की शक्ति को समझा। हमने देखा कि कैसे बिना किसी इरादे के केवल एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण समर्पण के कारण कदार्थी जैसे व्यक्ति को सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त हो गया।
हाँ।
तो जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि हम इंसान, जो हर समय बस अच्छे काम करने या पुण्य कमाने की रेस में भागते रहते हैं, वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं?
ये सोचने वाली बात है।
अगर एक अनजाने एक्सीडेंट में अहंकार का मिट जाना जीवन भर के घोर स्वार्थ पर भारी पड़ सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में कई बार हम उस बंदर की तरह खुद को परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ, गिरता पड़ता और डूबता हुआ महसूस करते हों? और जिन्हें हम अपने जीवन के सबसे बुरे और अंधकारमय दिन मान रहे होते हैं, वे वास्तव में किसी अदृश्य मृग तीर्थ के जल की तरह हमें भीतर से शुद्ध कर रहे हों?
बहुत गहरा विचार है ये,
है ना? शायद वो बुरे दिन हमें किसी बड़े सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार कर रहे हों। शायद ब्रह्मांड बस ये चाहता है कि हम कोशिश करना बंद कर दें, अपने इस मैं को छोड़ दें और पूरी तरह से सरेंडर कर दें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस ज्ञान यात्रा को यहीं विराम देते हैं।